येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है कृष्ण कथा में। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आभारी हैं मायापुरवासी प्रभु और अन्यों के, जिन्होंने इस पूरे महोत्सव को व्यवस्थापन किया है। क्योंकि कथा श्रवण ये हर उत्सव का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ भी उत्सवों का वर्णन आता है, यज्ञों का वर्णन आता है, तो वहाँ कथा का वर्णन आता है। नैमिषारण्य में यज्ञ हुए, सुत गोस्वामी ने कथा की। निमि महाराज क्या यज्ञ हुए, तो हम देखते हैं कि चार कुमारों ने आकर कथा की। ऐसे अलग अलग भागवत में कई स्थानों पर वर्णन है कि जहां भी यज्ञ हुए, अनुष्ठान हुए, उत्सव हुए, कथा निश्चित हुई। तो इसी प्रकार अब जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, वो भी पूर्ण तब भी होगा जब हम कथा श्रवण करें। और आप सबका भाग्य है कि पिछले कुछ दिनों से और आगे आने वाले कुछ दिनों तक आप कई वरिष्ठ भक्तों से कथा श्रवण कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों से भक्ता कथा कर रहे हैं। तो ये इस वर्ष की बहुत अच्छी भेंट है हम लोगों के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है अच्छी नहीं है, सब भयभीत हैं। लेकिन देखिए, अगर ये स्थिति नहीं होती तो दुनिया के अलग अलग कोनों से आपको ये कथा श्रवण नहीं होता। फिर हो सकता है कोई एक व्यक्ति आते कथा सुनाते, वो भी अच्छा है। लेकिन इस समय आप अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से कथा सुन रहे हैं, तो इसलिए बहुत आभारी हैं आप सबके। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्म विमोहन लीला पे। भगवान की ब्रज की लीलाओं में ब्रह्म विमोहन लीला ये बड़ी महत्वपूर्ण लीला हुई, तो आज हम इस लीला पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको इसका महत्व तो बताएं कि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए सुनने के लिए। पहला इसका कारण है कि ये जो कथा हुई, ये जो लीला हुई, ये हुई भगवान ने जब अपने एक आयु से दूसरी आयु में प्रवेश किया, कौमार से पौगंड में प्रवेश किया। तो जब भगवान 5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, उसको पौगंड लीला प्रारंभ करते हैं, तो ये लीला तब हुई। कहना चाहिए ये एक ही लीला है जो दोनों भगवान के दोनों वयों में, भगवान की एक आयु और दूसरी आयु, कैशोर और पौगंड, इन दोनों में हुई। भगवान की लीला वैसे ऐसी नहीं है किसी एक उम्र में होंगी, या तो किशोर लीला में होंगी, या कौमार लीला में होंगी, या बाल लीला में होंगी, या पौगंड लीला में होंगी, लेकिन ये ऐसी लीला है जो कौमार और पौगंड दोनों में हुई। 5 वर्ष के थे तब भी हुई, 6 वर्ष के थे तब भी हुई, तो ये महत्वपूर्ण लीला है। दूसरा महत्व इसका, ये एक ही ऐसी लीला है जिसमें बलराम जी भी भ्रमित हो गए, बलराम जी को भी चक्कर में डाल दिया भगवान ने। अन्य सब लीलाओं में, जैसे जब भगवान कालिया के ऊपर फणों पर नृत्य कर रहे हैं या कालिया के फणों में फंसे हुए हैं, सब लोग बड़े डर में हैं, बलराम जी हंस रहे हैं, बलराम जी को पता है कुछ होने वाला नहीं, तो वो सारी लीलाओं में सब कुछ पता था उन, लेकिन ये एक लीला थी जहां बलराम जी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ, बलराम जी को भी मोहित कर दिया भगवान ने। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बलराम जी को कौन मोहित कर सकता है, माया शक्ति तो बलराम जी के ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती, और ना ही भगवान की लीला शक्ति क्यों कर सकती, कैसे कर सकती भगवान की लीला शक्ति, क्योंकि वो भी तो भगवान ही है। जैसे हम लोग अभी बलराम जी के विषय में सुन चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि कौन है बलराम जी, वो भी भगवान है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, तो है वही भगवान, तो वो तो भगवान अपनी ही शक्ति के अधीन आ नहीं सकते, है तो उनकी शक्ति, तो फिर बलराम जी कैसे आ गए, कृष्ण कर सकते हैं, केवल कृष्ण हैं जो उन्हें मोहित कर सकते हैं, और कृष्ण ने उन्हें भी मोहित कर दिया। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण लीला, और किसी लीला में बलराम जी मोहित नहीं हुए प्राय, तो इसका ये महत्व है। तीसरा महत्व है कि इस लीला में जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, तो जो विमोहित हुए वो संप्रदाय के आचार्य हैं, आचार्य नहीं प्रारंभ करने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान ने जिन्हें स्पष्ट सीधे ज्ञान दिया हो वो ब्रह्मा जी मोह में पड़ रहे हैं, और जो संप्रदाय प्रारंभ करते हैं, 4 संप्रदायों में से ब्रह्म संप्रदाय के प्रणेता हैं वो, भगवान से, वैसे तो सारे भगवान से प्रारंभ होते हैं ये चारों, लेकिन भगवान ज्ञान देते ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी जी को और 4 कुमारों को, तो उनसे प्रारंभ हो जाते हैं संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी प्रारंभ करने वाले हैं और वो मोह में है। अब आप सोचिए कि अगर हमारे संप्रदाय के प्रणेता ही मोह में हों तो फिर हमारा संप्रदाय कैसे चलेगा। तो ये इसीलिए लीला को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, कैसे ब्रह्मा जी मोह में आ गए, नहीं तो हम लोग भ्रमित रहेंगे। तो ये और एक महत्व है इस लीला का, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। और एक महत्व, कितने महत्व बता चुके हैं अभी तक हम, 3 की 4। हाँ मदन गोविंद प्रभु ऐसे हाथ उठा रहे थे, कुछ 3 है 4 है। तो और एक महत्व है इस लीला का कि इस लीला में भगवान ने अपने ऐश्वर्य और अपने माधुर्य इन दोनों को मिला दिया है। साधारणतः ऐश्वर्य वैकुंठ में देखा जाता है, ऐश्वर्य भाव, और गोलोक में या वृंदावन में भगवान मधुरता को प्रकट करते हैं। लेकिन इस लीला में ऐश्वर्य और माधुर्य या मधुरता, इन दोनों का मिलन कर दिया भगवान ने। अर्थात जहां ऐश्वर्य का स्थान नहीं है वृंदावन, वहां भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाया ब्रह्मा जी को वैकुंठ का, और उसमें भी मधुरता लाए। तो ऐश्वर्य था लेकिन ऐश्वर्य में मधुरता, बहुत सुंदर ये वर्णन आएगा जब हम आगे करेंगे तो इसमें इस लीला का वर्णन आता है। और हम सब के लिए श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, ये जो लीला है इसका क्या महत्व है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये लीला आती है, ब्रह्म विमोहन लीला। और 13वां अध्याय ये अंतिम अध्याय है जिस पर श्रील प्रभुपाद जी ने टीका की है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण ग्रंथ पहले से लिख दिया था, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसमें 10वें स्कंद को सार के रूप में पहले ही दे दिया था। लेकिन जब प्रभुपाद हर एक श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को कर रहे थे तो इस अध्याय तक आए, और इस अध्याय के आगे श्रील प्रभुपाद फिर अनुवाद नहीं कर पाए। इस अध्याय के आगे के जो अनुवाद हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने बाद में किए हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि प्रभुपाद जी के आखिरी संदेश, मतलब जो उन्होंने अनुवादित किए हैं, वो इसमें, इस ग्रंथ में हमें मिलते हैं। इसके बाद प्रभुपाद ने नहीं किए, इस अध्याय में हमें मिलते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, बड़ी महत्वपूर्ण ये लीला है जहाँ ब्रह्मा जी बलराम जी सब मोहित हुए हैं। तो इसको हम अब श्रवण करेंगे, इस लीला को प्रयास करेंगे जितना समय है उसमें लीला भी कहें, पूरी लीला कह सकें। हमें नहीं पता, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ब्रह्मा जी को तो मोह में डाल सकते हैं, हमें मोह से बाहर रखें ताकि हम कथा कह सके। कथा के बाद फिर से डाल दें मोह में, कोई बात नहीं, लेकिन पहले कथा के समय, ताकि इस कथा को हम आपको वैसे बता सकें जैसे कृष्ण चाहते हैं, जैसे आचार्यों ने प्रस्तुत किया। भगवान की जब कथा हम सुनते हैं तो कथा को मनोरंजन के लिए सुनना एक बात है, कथा को शुद्धिकरण के लिए सुनना दूसरी बात है, और कथा को दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए, उसका रस लेने के लिए सुनना, ये तीसरी बात है। तो कभी कभी हम लोग कथाएं सुनते हैं, इधर उधर की कथाएं, वो केवल मनोरंजन का साधन है। जो लोग परंपरा में नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, कथा बड़ी अच्छी करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, साथ में संगीत इत्यादि सब चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लोग नृत्य भी करते हैं उनकी कथाओं में, और बहुत सारे होते हैं, ठीक, मनोरंजन के लिए अच्छा है। और हम कहते हैं कि एक अच्छा साधन है मनोरंजन का, लोग पिक्चरें ना देखकर कम से कम वो देख रहे हैं, ठीक, मनोरंजन का अच्छा साधन। दूसरी ओर शुद्धिकरण के लिए सुना जाता है, ज्ञान के लिए सुना जाता है, समझ के लिए सुना जाता है। कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, उनको समझने के लिए सुना जाता है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी लीलाएं सुनी जाती, कभी कभी नहीं, अधिकतर भागवतम की लीलाएं सुनी जाती हैं। जैसे भगवत गीता समझ के लिए है, और भागवत ये आनंद लेने के लिए, तो भगवान की लीलाओं में आनंद लेना चाहिए। भक्ति ये आनंद का मार्ग है, केवल आनंद कंद। तो शुरुआत की अवस्था में हम बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन कड़ाई से पालन करने का उद्देश्य होना चाहिए हम उस स्तर तक पहुंचे जहां हम कृष्ण भावनामृत को का आनंद ले सके। तो भक्ति में प्रगति का लक्षण क्या है? भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि हम आनंद ले रहे हैं कृष्ण भावनामृत, वो भक्ति में प्रगति का लक्षण है। तो इसीलिए हमें इनकी लीलाओं में, इन कृष्ण लीलाओं में, भागवत की कथाओं में आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये ब्रह्म विमोहन लीला प्रारंभ की सुखदेव गोस्वामी ने, तो उससे पहले उन्होंने अघासुर का वर्णन किया, उसके वध का, और अंत में उन्होंने कहा कि हालांकि अघासुर मारा गया जब भगवान कौमार्य लीला में कर रहे थे, 5 वर्ष के थे, लेकिन बच्चों ने आकर गांव में 1 वर्ष के बाद बताया, जब वो वापस आए वन से, वृंदावन में अपने अपने घर में वापस आए, तो उन्होंने 1 वर्ष बाद इस लीला को कहा, और ऐसे कहा मानो आज ही हुई है। तो परीक्षित महाराज ने सुना तो परीक्षित महाराज ने एकदम रोक दिया शुभदेव गोस्वामी को। उन्होंने कहा, ये क्या कहा आपने? आपने कहा कि लीला हुई जब वो 5 वर्ष के थे और बच्चों ने आकर बताया जब वो 6 वर्ष के थे, ये कैसे हो सकता है? मतलब 1 वर्ष तक, और ऐसे बताया कि मानो आज हुई है, तो क्या 1 वर्ष तक बच्चे वहीं थे, आए नहीं थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माता पिता दुखी हो जाएंगे, भागेंगे। तो परीक्षित महाराज भ्रम में आ गए। परीक्षित महाराज ने कहा, ये कैसे हो सकता है, आप कृपया बताइए, आप समझाइए, और ये कैसे हुआ? तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना, अभी उन्होंने अघासुर की लीला वर्णन कर दी थी, कृष्ण के लीलाओं में मग्न थे, और जब उन्होंने ये प्रश्न सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता कि वो भाव विभोर हो गए सुखदेव गोस्वामी, और वो अपनी चेतना खो बैठे। तुझे कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते वो भाव विभोर हो गए, मूर्छित हो गए। परीक्षित महाराज देख रहे हैं क्या हुआ, सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने भाव में थे। फिर थोड़े समय बाद उनकी बाहरी चेतना वापस आई, और फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को धन्यवाद दिया। परीक्षित महाराज को कहा कि हालांकि आप बहुत समय से सुन रहे हैं, बहुत समय का अर्थ ये नहीं था कि 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से सुन रहे हैं, प्राय है ये अध्याय तक आते आते 10वें स्कंद 4-5 दिन हो गए होंगे, 4 दिन के बाद ही 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ था, तो 4था या 5वां दिन था। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत समय से सुन रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि तुम 4-5 दिन से, वो कह रहे थे महाराज आप तो बचपन से सुन रहे हैं कृष्ण की कथाओं को, लेकिन फिर भी नए नए लगती हैं आपको, नया नया रस आपको आ रहा है इन कथाओं में। ये देखकर सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद में आ गए कि कैसे कैसे मेरे श्रोता हैं। वक्ता को कथा कहने का आनंद तब आता है जब सुनने वाले में उस कथा में नई नई रुचि आए और सुनना चाहे। हमारे यहाँ भागवतम क्लास होती है तो फिर जब बोलने वाला होता है उसका उत्साह 5-10 मिनट बाद ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि सामने वाले सब सो जाते हैं। भागवतम का हमारा नियम है, इस कौन का भागवतम में ना सोएं तो ऐसा लगता है कि जैसे परंपरा का पालन नहीं किया। लेकिन परीक्षित महाराज बिल्कुल सो नहीं रहे थे, और परीक्षित महाराज के उस उत्साह को देखकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, धन्यवाद दिया उन्होंने कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको नई नई लीलाएं समझ कर, लेकिन आपने तो बचपन से सुना। परीक्षित महाराज जब छोटे बच्चे थे तब से कथाओं को सुन रहे थे कृष्ण की। परीक्षित महाराज ने और कुछ नहीं किया, अन्य बालकों की तरह खेलना इत्यादि नहीं, वो खेला भी करते थे तो उनकी गुड़ियाएं कृष्ण की गुड़ियाओं से खेला करते थे। देखिए बच्चों को अगर हमें पालना है, कई बार लोग जब बच्चे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं तब लोग प्रश्न करते हैं, साधुओं के पास जाते हैं कि अरे महाराज कुछ कीजिए, प्रभु जी कुछ कीजिए, हमारा बच्चा हमारी सुन नहीं रहा है, हमारा बच्चा ऐसा निकला वैसा निकला। लेकिन क्यों निकला? क्योंकि बचपन में आपने उसको कृष्ण कथा नहीं सुनाई, जब छोटा था तब आपने उसको पिक्चर दिखाई, फिल्म के गाने सुनाए, और जब वो गाने सुनाता था खड़े होकर अपनी तोतली भाषा में, तब आपको बड़ा आनंद आता था, तब आपने नहीं सोचा कि क्या प्रभाव होगा आगे चलकर। अगर तब से उसको कृष्ण कथा सुनाई होती, तब से उसको भगवान के विषय में, भगवान के भजन गाने में लगाया होता, तब से उसको जो गुड़ियाएं दी थी वो गौर निताई या जगन्नाथ बलदेव की दी होती, जिसको वो खेल खेल कर जिनसे बड़ा होता, तो वो भी परीक्षित महाराज की तरह श्रेष्ठ भक्त बनता। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने तो बचपन से सुना है इन कथाओं को, और इसीलिए फिर भी आपको नया नया लग रहा है, ये भक्ति में आगे बढ़े हुए भक्त का लक्षण है, परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज, ये भक्ति में आगे बढ़े हुए भक्त का लक्षण है। तो क्या लक्षण है भक्त का? कि वो उन्हीं कथाओं को सुनता है। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज की लीला को सुन रहे हैं कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 100 बार उन्हीं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहली कथा में ध्रुव महाराज 5 साल के थे और दूसरी कथा में 10 साल के हो गए, लीला बदल गई। ऐसा नहीं था कि पहली कथा में उनको गोद से फेंक दिया गया था, दूसरी कथा में पिता ने उठाकर गले से लगा दिया। ऐसा नहीं है कि एक कथा में नारद मुनि मिले और दूसरी कथा में सुखदेव गोस्वामी मिले। वही कथा थी, वही ध्रुव महाराज, वही उनके पिता, वही उनका गोद से फेंका जाना, वही नारद मुनि से मिलना, वही मंत्र देना, वही तपस्या और वही भगवान का प्राकट्य, सब वही था। लेकिन महाप्रभु सुन रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? ये दिखलाने के लिए कि भक्ति में आगे बढ़े हुए भक्त का लक्षण है कि वो कथाओं में रुचि लेता है। आजकल हमारी संस्था में हम लोग बहुत सारी चीजें करने लगे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे कथाओं में रुचि कम होने लगी। हमने देखा है कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनका गोविंदा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चलता है, उनकी बाकी चीजें, लेकिन सुबह भागवतम में 2 लोग रहते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे मंदिर कैसे हों? हमारे मंदिर ऐसे हों जहां लोगों को श्रवण और कीर्तन की सुविधा दी जा सके। इन्हें मंदिर कहा है प्रभुपाद ने। हाँ, बाकी चीजें आवश्यक हैं, हमें गोविंदास बनाना चाहिए, गेस्ट हाउस बनाना चाहिए, क्यों नहीं, सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन श्रवण की सुविधा ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो श्रवण का महत्व बताया उन्होंने, कहा ये आपका, ये बड़े हुए भक्त का। और फिर जब उन्होंने भक्त का बात कर दी तो सुखदेव गोस्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने भक्तों के लक्षण कह दिए। हालांकि कथा होनी है कृष्ण की, ब्रह्मा जी की, लेकिन उन्होंने परीक्षित महाराज का गुणगान किया कि आप इतने महान भक्त हैं, बचपन से सुनकर भी आपका मन नहीं भरा। अब आप ये नहीं कहते कि ये कथा तो मुझे पता है, आप दूसरी कोई बताइए, उल्टा आप पूछ रहे कैसे हुआ और फिर से बताइए। ये भक्त के लक्षण। और जब उसको कहा तो तुरंत उन्होंने फिर भक्तों के लक्षण दिए। तो सुखदेव गोस्वामी और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य में, सुखदेव गोस्वामी के श्लोक अनुवाद और प्रभुपाद के तात्पर्य में भक्तों के लक्षण दिए गए कि कौन, किसे कहा जाएगा कौन भक्त है। तो पहला लक्षण दिया है भक्त का कि जिसने अपने जीवन का उद्देश्य कृष्ण को बनाया है वो भक्त है। हमारे जीवन के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप सब जानते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, और कृष्ण भी एक उद्देश्य है उनमें से, इसलिए हम भक्त कहलाते हैं। जब से हम लोग आए हैं भक्ति में, हम लोग भक्त कहलाते हैं, दीक्षा नहीं होती तो भी भक्त कहलाते हैं, भक्त विजय, भक्त ये। तो हम लोग भक्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बाकी सारे उद्देश्यों में हमने कृष्ण को भी उद्देश्य रखा है, इसीलिए अन्य लोगों के उद्देश्यों में कृष्ण है ही नहीं, हमारे में बहुत से उद्देश्यों में एक है, इसलिए हम भक्त कहलाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, जिसने जीवन में एक ही उद्देश्य रखा है कृष्ण, वो भक्त है। कृष्ण उसके जीवन का, बाकी सारे कार्य करता है। परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे, ऐसे महान भक्तों को राज्य करने की क्या जरूरत है? भक्ति विनोद ठाकुर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की क्या जरूरत है? ये दिखलाने के लिए कि भक्त सारे कार्य करते हुए भी कृष्ण को उद्देश्य बनाकर जी सकते, ये हमारे आचार्य गण हैं जो हमें ये सिखला रहे हैं। कि कोई ये नहीं कहे कि अरे कृष्ण को जीवन का उद्देश्य तो सन्यासियों का काम है, वो बनाए, हमारा काम नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, संताने हैं उनकी, इतनी सारी संताने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है, लेकिन कृष्ण जीवन का उद्देश्य। परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा, पूरी पृथ्वी के राजा थे वो, तो आपको क्या लगता है कि राजा थे तो कुछ काम नहीं करते थे? कितने व्यस्त रहते होंगे आप सोचिए, लेकिन फिर भी कृष्ण जीवन का उद्देश्य। तो इसीलिए हमारे मन से हमें निकाल देना चाहिए। तो कृष्ण भी हमारे जीवन का उद्देश्य ना हो, कृष्ण ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ये बात है। तो बदलिए अपने आप को, कृष्ण भी से कृष्ण ही तक लाइए, कृष्ण ही जीवन का उद्देश्य है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण के विषय में ही बात करता है। उसको भक्त कहा है सुखदेव गोस्वामी ने कि वो हमेशा कृष्ण के विषय में बात करता है। और हम लोग कभी कभी कथा ऑर्गेनाइज होती है, अभी मायापुरवासी प्रभु ने हमसे कहा कि प्रभु जी आपको कहना है, तो ठीक है हफ्ते में एक बार एक घंटा हम भी बोल लेते हैं कृष्ण के विषय बस। लेकिन भक्त कौन है, वो कृष्ण के विषय में ही बात करता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर लक्षण देते हैं भक्त के तात्पर्य में। वो कहते हैं कि भक्त उसे कहते हैं जिसका जीवन कृष्ण है। कृष्ण इज लाइफ फॉर हिम, कृष्ण ही उसका जीवन है। आप देखिए हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्त किसे कहा जाता है? हम कोई साधारण नौकरी करने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो 5 घंटा नौकरी करता है तब तक बॉस के अधीन रहता है, बाद में बॉस को गालियां देता है। हम भक्त की बात कर रहे हैं। भक्त मतलब वो जिसने अपना जीवन सौंप दिया कृष्ण के हाथ में, इसलिए कृष्ण उनका जीवन है। और वो उनका जीवन है और वो कभी भी कृष्ण कथा के श्रवण को त्याग नहीं पाता, हमेशा कभी भी कृष्ण कथा को नहीं त्याग पाएगा, वो भक्त है। जहां कृष्ण कथा हो रही हो, प्रामाणिक कृष्ण कथा, वो पहुंच जाएगा। कोई कर रहा हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई वरिष्ठ बैठे हो, कोई कनिष्ठ बैठे हो, कोई उनसे उम्र में छोटे बैठे हो, कुछ नहीं, कृष्ण कथा हो रही हो पहुंच गया, वो भी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा की जा रही, प्रामाणिक परंपरा में आकर वो पहुंच जाता है, ये भक्त है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के तो करता ही, और सदैव कृष्ण को अपने हृदय में वो सदैव दर्शन करता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं कि वो सदैव कृष्ण का दर्शन करता है। आप सोचिए क्या शुद्धता होगी उस व्यक्ति की, कल्पना कीजिए। केवल हमारा चिंतन क्या है, भोग प्रवृत्ति, आनंद लेना, कुछ धन कमाना, परिवार चलाना, समाज में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करना, हमारा सतत चिंतन इन सब चीजों का है, और भक्त का चिंतन कृष्ण। कितनी शुद्धता होगी उस व्यक्ति के हृदय में जो सतत कृष्ण का चिंतन करता है। इसे भक्त कहा गया कि हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में देखता है वो, इसीलिए कोई पाप नहीं कर पाता, इसीलिए उसके हृदय से काम क्रोध ये सारी चीजें चली जाती हैं। गौतम दास ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जाने, लोभ साधु संगे हरि मोह इष्ट लभ बिने, मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीब जतत। तो ये भक्त के लक्षण उन्होंने दिए। क्या लक्षण दिए हैं, कैसे काम क्रोध लोभ मोह ये जो हमारे मन में भरा पड़ा है इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो कहते हैं काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम जो है काम मतलब इच्छाएं हैं, तो उनको क्या करना है, कृष्ण कर्मार्पणे, सारे कर्म कृष्ण को अर्पण कर देना, कोई इच्छा नहीं रखनी, काम चला जाएगा। और क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध का इस्तेमाल करना है उन व्यक्तियों के लिए जो भक्तों से द्वेष करते हैं, जो भक्तों के प्रति द्वेष की भावना रखकर उनके प्रति हिंसा का भाव रखते हैं, उन लोगों को हमें उनके प्रति क्रोध दर्शाना। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते अर्जुन का, हनुमान जी का, हनुमान जी ने लंका जला दी, अर्जुन ने युद्ध किया, क्रोध दिखलाया, इसलिए भक्त कृषि जन। और फिर लोभ, बहुत सुंदर वो बात कहते हैं, लोभ क्या है, लोभ साधु संगे हरि कथा। तो हमारा लोभ होना चाहिए कि साधुओं के संग बस हरि कथा हो जाए, ये हमारा लोभ होना चाहिए। इसके लिए लालची होना चाहिए। देखिए कभी कभी कहा जाता है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां बताया जा रहा है होना चाहिए लालची, लोभी बनिए। किस लिए? साधु संगे हरि कथा, साधुओं के साथ में हरि कथा सुनने, भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा सुने, इसके लिए लोभी होना चाहिए हमें। और ये लोभ कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर मर रहे हैं आप, अंतिम क्षण है, बस कुछ ही समय बाकी है, और कोई आकर कहे भागवत सुनाना है, तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। यस, सुनना है, ये जीवन का सार। भागवत सुनते सुनते जाने से अच्छा और क्या मृत्यु हो सकती। तो इसीलिए ये लोभ होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को लालच होता है, वो अगर हॉस्पिटल में भी पड़ा है, उसके सब वो मशीनें लगी हुई हैं, सिरिंज लगी हुई हैं, और उसको आकर कोई कहता है कि देखो बहुत बढ़िया बिजनेस का, व्यापार का एक प्रस्ताव आया है, बस लेकिन अभी बोलना है, अब हाँ अभी करना है, हाँ या ना, नहीं तो निकल जाएगा। तो वो उस अवस्था में भी सुनेगा और हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, जो भी, उसको बड़ी रुचि होगी कि हाँ ये तो अवस्था चली जाएगी, फिर धन कमाऊंगा। इसको कहते हैं लोभ। तो ऐसा लोभ हमें होना चाहिए कृष्ण कथा के लिए। तो लोभ साधु संगे हरि कथा। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, और फिर मोह इष्ट लभे बिना। तो कहते कि मोह तो प्रकट होगा ही जब मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण मुझे लभ्य या मुझे मिलेंगे नहीं, बिने। जब कृष्ण नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? मोह होगा। मतलब मोह को समाप्त करना है तो कृष्ण को प्राप्त करना है, इसलिए कहते मोह इष्ट लभे बिना। और मद कृष्ण गुण गाने, मद मतलब एक दृष्टि से पागलपन, व्यक्ति मद कहते हैं ना, मदांध हो गया, नशा हो गया उसको, पागलपन। तो वो पागलपन किस लिए होना चाहिए? कृष्ण गुणार, कृष्ण के गुण का गान करने के लिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए कृष्ण के गुणगान करने में। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में किसी ने नाम नहीं सुना है, प्रभुपाद अकेले एक छोटा सा ड्रम लेकर एक पार्क में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। कोई भी देखेगा पागल समझेगा, ये बूढ़े व्यक्ति पागल हो गए, अरे इनको जाकर मछली पकड़नी चाहिए, फिशिंग करनी चाहिए, इनको टीवी देखना चाहिए। अमेरिका में तो यही करते हैं, बूढ़े लोगों का यही काम है, तो इनको फिशिंग करनी चाहिए, टीवी देखना चाहिए, क्लब में जाना चाहिए, ये पार्क में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसे कहते हैं मद कृष्ण गुण गाने। प्रभुपाद ने नहीं सोचा कि कोई ये क्या सोचेगा। अगर हमें पागल होना है तो हम ये धन के पीछे क्यों पागल हो, सत्ता के पीछे क्यों पागल। आप देखिए कितने झगड़ते हैं ये लोग पॉलिटिशियंस, कोई कुछ कर दे तो कोई विरोध कर देता है, ये कर दे तो वो विरोध कर देता है, अच्छा काम करो तो विरोध होता है, बुरा काम करो तो विरोध होता है, कुछ नहीं करो तो भी विरोध होता है, ये राजनीति है। मंदिर नहीं बनाओ तो विरोध होता है, मंदिर बनाओ तो विरोध होता है ये राजनीति है। तो इसीलिए देखिए लोग कितने, मतलब देखा जाए तो एक तरह का पागलपन है इनको, सत्ता का पागल, बस किसी के द्वारा सत्ता चाहिए। तो अगर पागल ही होना है तो क्यों इन चीजों के पीछे हो? पागल होना है तो कृष्ण गुण गाने, मद कृष्ण गुण गाने, निजुक्त करीब जतता, इसको नियुक्त करना चाहिए ऐसे। तो उसे भक्त कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद भक्त के और दो लक्षण बहुत सुंदर देते हैं। एक कि भक्त को डर होता है, भय होता है। ऐसे तो भक्त निर्भय है, अभय चरणारविंद रे, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कैसा भय। प्रभुपाद के जिसको भय होता, क्या भय होता है, मैं कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाऊं, भक्ति कर रहा हूं तो बस लगा रहूं, सेवा करता रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मेरे मन में कोई और भाव आ जाए, मैं कृष्ण को छोड़कर, भक्ति के पथ को छोड़कर कहीं चला, इसका डर रहना चाहिए। ये हेल्दी फियर है, ये भय होना चाहिए हमारे अंदर। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा उसको भय होता है, और साथ ही साथ जो अन्य लोगों के लिए बहुत मधुर लगने वाली चीज है उसके लिए विष के समान होती है। इस जगत में लोगों को मधुर क्या लगता है? सत्ता मिल जाए बड़ी मधुर है उनको, स्त्री संग मिल जाए बड़ा मधुर है उनके लिए, धन मिल जाए बड़ा मधुर है, और ये सब विष के समान है भक्त के। क्यों? क्योंकि उसके लिए मधुर एक ही चीज है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम। उसके लिए मधुर है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम, ये मधुर है। तो ऐसे भक्त के लक्षणों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं लीला सुनाता हूं आपको परीक्षित महाराज, लेकिन एक बात याद रखिए कि बड़ी गूहीय लीलाएं हैं, समझने में भी कठिन है कैसे कृष्ण ने किया क्या किया, बड़ी गूहीय लीलाएं हैं और संभव नहीं है कि बताया जा सके। लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को समझाते हैं ये लीलाएं, क्यों? क्योंकि शिष्य समर्पित होता है। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत स्पष्ट किया परीक्षित महाराज को कि आपको मैं ये समझा रहा हूं क्योंकि आप समर्पित हैं, आप बड़े समर्पित भाव से श्रवण कर रहे हैं, समर्पित शिष्य हैं, और एक आध्यात्मिक गुरु ये समर्पित शिष्य को वो सारी लीलाएं भगवान की बता देता है जो बड़ी गोपनीय है, जिनको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन वो बताता है। तो उस समय फिर सुखदेव गोस्वामी इस लीला को कहने लगे, इस ब्रह्म विमोहन लीला को। तो उन्होंने प्रारंभ किया कि अघासुर का तो वध हो गया, और अब श्री कृष्ण, उसी दिन की बात है, तो अघासुर का वध हो गया, श्री कृष्ण सवा छह हो गया, लीला प्रारंभ करते करते सवा छह हो गया है, 5:30 बजे से, मतलब 45 मिनट। अब हमें पता नहीं लीला समाप्त करते करते कितना समय होगा, खैर जितना बोल सकेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण आए सब बालकों को लेकर। अब बालकों ने देखा अघासुर का वध हो गया, अब सब थक भी गए थे, तो फिर एक स्थान पर आए, बहुत सुंदर स्थान था, नदी का किनारा था, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और बड़े सुंदर वृक्ष थे, वृक्ष पर बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा ये स्थान बहुत अच्छा है, हम लोग यहीं बैठें। तो ठीक है, सब बैठ गए कृष्ण केंद्र में, और सारे लोग, सारे जो बालक थे वो कृष्ण को घेर कर बैठ गए। ऐसा लगा मानो कमल हो और कृष्ण बीच में है और चारों तरफ ऐसे कमल के पंखुड़ियां हैं। तो ऐसे वो बैठे, और सब अभी दोपहर का समय था तो खाना था उनको, तो सब खाने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे। ये हर रोज होता था, भगवान को भोग लगता था करीब 11:30-12 बजे करीब दोपहर को, क्योंकि बच्चे सुबह निकलते थे और फिर अब दोपहर तक थक जाते थे, तो अब सब जो अपने घर से लाए थे वो उसको निकालते थे। इसीलिए हमारे मंदिरों में दोपहर को 12 बजे भगवान को राजभोग लगता है। उस लीला का स्मरण, जिस समय भगवान वहां बैठे सबके साथ राजभोग ले रहे हैं, तो हम लोग भी लगा दें। खैर हमारा राजभोग और वो, उसमें तो अंतर है जो भगवान वहां खाते हैं, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। तो सभी बच्चे बैठे और अब खा रहे हैं सब लोग। तो क्या खा रहे हैं, सब लोग अपने अपने जो जो लाए थे सबने निकाला। और हमने पहले भी कहा है कि कृष्ण के लिए, कृष्ण के उस समय जो बालक होते थे वो सारे उनके साथ, वो बहुत से होते थे बालक, और हर कोई लाया है और हर कोई चाहता है पहले कृष्ण मैं जो लाया हूं वो खा ले। और कृष्ण उन सबको संतुष्ट करते थे। कैसे? कृष्ण अपने आप का विस्तार कर लेते, हर बालक के सामने बैठे तो हर बालक निकाला, कुछ खिला रहे हैं, कोई कुछ लाया, कुछ कुछ लाया। तो इतने में क्योंकि ये लोग इसमें व्यस्त हो गए, उन्होंने देखा कि जो गाय बछड़े थे उस समय, दरअसल वो बछड़े चरा रहे, तो जो बछड़े थे वो सब चले गए। देखा रे कहाँ गई, दूर चले गई हैं गाय बछड़े। तो सारे हैरान हो गए, रे तो सबने कहा, चिंता में हो गए, चलो चलो देखें। तो कृष्ण ने कहा रे आप लोग रुको। तो कृष्ण के उस समय हाथ में दही चावल था, कृष्ण ने लिया हुआ था हाथ में। तो कृष्ण ने कहा कि आप यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, मैं जाके सबको देखा, आप अपना खाते रहो और डरो नहीं, मैं ले आऊंगा अभी बच्चों को जाकर। तो फिर जब कृष्ण हैं तो उनकी उपस्थिति में क्या भय हो सकता है किसी को। बालक बहुत, वहां जितने भी बालक थे उनको कृष्ण पर इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, हम लोगों को तो हो ही नहीं सकती, हो जाए तो हम भय मुक्त हो जाए। उनको कोई भय नहीं था, इसलिए अघासुर के मुख में चले गए थे, कौन जा सकता है, जानते हुए कि अरे तो कोई बहुत बड़ा सांप लग रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, चलो चलते हैं। मानो किसी ने अगर कहा भी अरे कुछ हो गया, कृष्ण है ना, चिंता क्यों कर, चलो चल दिए, तो कोई भय नहीं। तो यहाँ भी जब कृष्ण ने कहा कि आप बैठो मैं लेकर आता हूँ, तो सारे आराम से बैठे। ये कृष्ण से जुड़ने का लक्षण है। हमने अभी अभी कहा भय होना चाहिए, क्या कि हम पथ से भ्रष्ट ना हो। वो भी कब तक? वो भय भी तब तक होता है जब तक हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर ले। इन बालकों के लिए क्या भय है, इनके लिए तो कृष्ण आए हुए हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। तो ये जो बच्चे हैं इनके साथ खेल रहे हैं कृष्ण। कौन खेल रहे हैं? जो योगियों के लिए परमात्मा है, ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म है, और दासत्व स्वीकार करने वालों के लिए भगवान है, वो इनके साथ खेल रहे। क्या भय हो सकता है? और इसी तरह जो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां सतत कृष्ण का चिंतन है, कृष्ण का संग करता है, उसके लिए भी कोई भय नहीं रह जाता। प्रभुपाद को क्या भय था? अमेरिका में जब गए अकेले, कोई भय था कि क्या होगा, किसी ने मुझे मार दिया तो क्या होगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, कौन खाना बनाएगा मेरा, कौन क्या। प्रभुपाद चल दिए, जो था उनके पास बस लेकर चल दिए, थोड़े से कपड़े, भागवतम चैतन्य चरितामृत, चल दिए, पूरा विश्वास। मैं नहीं जानता कि क्यों लाए हो आप मुझे यहाँ पर, लेकिन आप लाए हो तो आपका कोई कार्य होगा, चल दिए। वहां पर भी बड़ी तकलीफें हुई, प्रभुपाद रहे, तो इसलिए भय नहीं। तो बच्चों, बच्चे सब बैठ गए कि ठीक है, बालक सब बैठ गए, कृष्ण चले गए कि हम। तो ये लक्षण है उन व्यक्तियों का जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। उनको चिंता नहीं रहती है मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, कोई भय नहीं है, सब कृष्ण पर छोड़ दिया। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेश। कोई विपदा नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। हमें कम से कम कल्पना कर लेनी चाहिए ऐसे जीवन की, क्या जीवन है वो जहां भय मुक्त जीवन है, कोरोना का भय नहीं। मृत्यु का ही भय नहीं है तो क्या कोरोना का भय होगा। जिस व्यक्ति के हृदय से मृत्यु का भय निकल जाए वो क्या ये छोटी मोटी बीमारियों से डरेगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्यों हो जाएगी, अगले जन्म में फिर कृष्ण की सेवा करेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब भक्त ऐसे कहते हैं तो जो लोग जिन्होंने कभी ये सुना नहीं है वो बड़े घबरा जाते हैं, अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मरने की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। भक्त को कोई चिंता, इस जगत की अच्छी बुरी सारी बातें बुरी जब तक कृष्ण से नहीं जुड़ी। तो इसीलिए वो बच्चे वहां रहे और कृष्ण चल दिए देखने के लिए कि कैसे कहां पर हैं। तो जब गए वहां देखे, देख रहे हैं तो कहीं दिखे नहीं। तो इतने में हुआ ये कि ब्रह्मा जी वो जो अपने धाम में बैठे थे, अपने स्थान में, धाम जो भी उनका स्थान है, लोक है, तो उन्होंने हंगामा सुना। क्यों? अघासुर मुक्त हो गया, वो जा रहा था भगवान के धाम, तो हंगामा हो रहा था, देवता सब गुणगान कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, वाह 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 कृष्ण का गुणगान, अरे सुना क्या हुआ। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, देखा इधर उधर, क्या बात है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है। तो पता चला अघासुर मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे, डिपार्टमेंट मेरा है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है और मुझे पता ही नहीं और वो मुक्त हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो किसने किया? कृष्ण ने किया। कौन कृष्ण? वो बालक की तरह देखिए वहां पर है, लीला कर रहे हैं। अच्छा उसने मुक्त कर दिया इतने छोटे बच्चे ने? अरे हाँ, 5 साल के बच्चे ने। हाँ ये देख जा रहा, चला भी गया, आप तो थोड़ा लेट हो गए नहीं तो आपको भी दिख जाता। तो ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो गए कि ये हो क्या रहा है इस जगत में, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा पापी व्यक्ति वो मुक्त हो गया। ये कृष्ण की महानता है, कृष्ण जिनको मारते हैं वो तो मुक्त होने ही होने हैं, मारना तो बहुत बड़ी बात है, कृष्ण के संपर्क में जो आ जाए वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आ जाए वो मुक्त हो जाता है, कृष्ण की कथा सुन ले वो मुक्त हो जाता है, कृष्ण का नाम ले ले वो मुक्त हो जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगर कोई कृष्ण का नाम लेने से मुक्त हो सकता है, कोई कृष्ण के दर्शन करने से मुक्त हो सकता है, कृष्ण की कथा सुनने से, तो फिर कृष्ण के द्वारा अगर अपने हाथों से वो मारा जा रहा है तो फिर वो क्यों नहीं मुक्त होगा, तो मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी बड़े कहना चाहिए दुखी तो नहीं हुए, भ्रम में आ गए, ये कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी आए तुरंत अपने हंस पर सवार होकर, देखें क्या हो रहा है, कौन है ये बता रहे हैं, कृष्ण ने कर दिया, देखें कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी चित्र देख रहे हैं, या वो जो उस समय चल रहा है वो वहां पर दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या दृश्य देखा है ब्रह्मा जी ने? सब बालक बैठे हुए हैं, ये जब बैठे थे तब की बात है, और सब कृष्ण को खिला रहे हैं, और कैसे खिला रहे हैं, कोई झूठा खिला रहा है। एक बालक ने अपने मुंह में छास भर ली और कृष्ण ने कहा मुझे छास चाहिए, छास चाहिए, उसने कहा ये लो मटका छास का, कृष्ण लेने लगे, वो खुद पी गया सारा, मुंह भर गया उसके यहाँ तो गालों में भरा हुआ है। कृष्ण को छास चाहिए थी तो कृष्ण ने जाकर उसके गालों पे ऐसे मारा दो, जैसे मारा उसका मुंह खुल गया और ऐसे पिचकारी की तरह वो छास बाहर आई, और वो बाहर आई और कृष्ण ने मुंह खोल दिया और आ करके कृष्ण पी रहे। ब्रह्मा जी ये देख रहे, ब्रह्मा जी का कैसे, ब्रह्मा जी शायद कहने लगे कृष्ण 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 ये क्या हो रहा है, ये कैसे भगवान है, अरे भगवान को भोग लगता है, कितनी शुद्धता से मंत्र पढ़े जाते हैं, मुद्राएं की जाती हैं, घंटी बजती है, क्या क्या नहीं होता शुद्धता से तब भोग लगता है, ये तो न मंत्र न मुद्रा न घंटी बजी कुछ नहीं, न वेद पालन, सीधा मुंह से निकला झूठा और वही पी गई, ये कैसे भगवान है। ब्रह्मा जी मधुरता को समझ नहीं पाए, ऐश्वर्य को समझते हैं भगवान के लेकिन मधुरता को समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो गए कि ये क्या है। तो कैसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं, हमारे संप्रदाय आचार्य कैसे भ्रमित हो सकते हैं? आचार्य गणों ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कई रूपों में कार्य करते हैं, एक ही ब्रह्मा है लेकिन अलग अलग स्वरूप हैं उनके। एक स्वरूप है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का, जो सृष्टि करते हैं। दूसरा स्वरूप है आचार्य ब्रह्मा का, जो जो ज्ञान देते हैं, जो परंपरा को प्रारंभ करते हैं, वो आचार्य ब्रह्मा कहलाते हैं। तो जो भ्रमित हुए वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी थे, आचार्य ब्रह्मा नहीं थे। आचार्य ब्रह्मा कभी भ्रमित नहीं होते, वो आचार्य ब्रह्मा हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं भक्ति का ज्ञान देने के लिए, हरिनाम का महत्व बताने के लिए। लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा और फिर क्या देखा, ये छोटा सा बालक। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे देखना चाहिए, तो उन्होंने सारी जो बछड़े थे उनको चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने चुरा कर बोला कि कहीं पे रख देंगे। तो ब्रह्मा जी ने चुराया, अब कृष्ण आए हैं तो उनको देख रहे हैं, भगवान खड़े हुए। कैसे देख रहे हैं, हम देखा छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी खाते खाते बस हाथ में कुछ लेके चले जाते हैं, इसके देखने इधर उधर देखते रखते, पता नहीं क्या, हमको भी समझ नहीं आता वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहिए उनको। फिर माताएं उनको पूछती रहती क्या चाहिए क्या चाहिए, तो वो कुछ इधर उधर देखता है, फिर चुपचाप चला जाता है। कुछ बच्चा ऐसे काम करता है, आप सबको तो अनुभव ज्यादा होगा इस सबका, ब्रह्मचारियों को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी ने भी यही देखा, 5 साल का बच्चा है, हाथ में दही चावल लिए हुए है और ऐसे बस इधर उधर देख रहा है, भ्रमित है कृष्ण भ्रमित है, तो इधर उधर देख रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भ्रमित है, कृष्ण जानते थे कौन भ्रमित है। तो ब्रह्मा जी इधर उधर, ब्रह्मा जी देख रहे हैं बालक को, ये भगवान ये तो जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर भगवान होते तो इनको सब पता होता, मैंने इनके बछड़ों को छुड़ाया इनको ही नहीं पता। तो खैर जब वो यहाँ आए कृष्ण ढूंढने के लिए, ब्रह्मा जी ने वहां से उन बच्चों को भी चुरा लिया और फिर उन सबको ले गए और एक स्थान पर रखकर वापस आए। तो अब जब कृष्ण ने देखा कि अरे कोई बछड़े नहीं दिख रहे हैं, तो कृष्ण सोचे जाकर सबको बुलाकर लाता हूं। तो कृष्ण वापस आए तो देखा कोई बालक भी नहीं है यहाँ पर, अरे ये क्या हुआ। और फिर कृष्ण को जब लीला में होते हैं कृष्ण, तो स्वाभाविक है कि वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब वो भूलते नहीं है। कृष्ण को तो स्मरण रहता है सब कुछ। कृष्ण ने जान लिया कि अच्छा ब्रह्मा जी ये कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए थी कि देखें तो कि अघासुर को इन्होंने मुक्त किया है भी कि यही है कि कैसे है, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए ब्रह्मा जी उनके और ऐश्वर्य को देखना चाहते थे। ब्रह्मा जी जान गए थे भगवान है, कुछ और ऐश्वर्य देखना चाहते थे, कुछ और ऐसी लीला देखना चाहते हैं जो बड़ी मधुर हो, प्लस उसमें मेरे जैसे ऐश्वर्य के भक्त के लिए भी कुछ हो। तो फिर ब्रह्मा जी को जो भगवान जान गए कि ये ब्रह्मा जी ने किया है, अब ब्रह्मा जी बच्चों को और बछड़ों को लेकर गए एक गुफा में रख कर आया। ब्रह्मा जी का समय और यहाँ के समय में बहुत अंतर है, तो ब्रह्मा जी का एक क्षण जाना और आना ये यहाँ के एक वर्ष के बराबर हो गया। तो मतलब ब्रह्मा जी जब गए और जब वापस आए तो देखा कि एक वर्ष बीत गया बच्चों को। तो श्री कृष्ण ने अब जब देखा कि कुछ नहीं है, तो श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया। तो भगवान ने अपने ही जैसे अपने स्वरूपों को प्रकट किया और उन सब ने बालकों का और बछड़ों का रूप ले, मतलब सोचिए असंख्य बालक थे असंख्य बछड़े थे, वो सब कृष्ण हो गए। और अब वन में गए थे एक कृष्ण, लेकिन शाम को वापस आ रहे हैं सारे के सारे कृष्ण। जितने बच्चे हैं वो कृष्ण हैं, जितने बछड़े हैं वो कृष्ण। और अब ये वो दिन था जब बलराम जयंती थी, बलराम पूर्णिमा थी, इसलिए बलराम जी उस दिन आए नहीं थे। बलराम जी को घर में ही रोक लिया था ये कहने के कहकर रोहिणी माता ने कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें कुछ यज्ञ इत्यादि करना है, तुम रुक जाओ। देखिए ऐसे मनाया जाता था जन्म दिवस, आज की तरह नहीं कि वो केक लगाया उसके ऊपर मोमबत्ती लगाई उसको फूंक मार दी। यज्ञ की अग्नि जलाई जाती थी, फूंक मारकर बुझाया नहीं जाता था। ये तो पता नहीं, ये हमारे पाश्चात्य जगत को अंधे की तरह पालन करने में हम ये भी नहीं जानते कर क्या रहे। वैदिक संपदा, वैदिक जो सभ्यता है उसमें दिया व्यक्ति के मरने पर बुझाया जाता है, और जन्म दिवस मनाते हैं बच्चे का बड़े उत्साह से, और उसी को कहते चलो बंद करो बुझाओ, कितना गलत है। मतलब हम लोग पाश्चात्य जगत का पालन करते करते उनके पीछे भागते भागते ये भी भूल गए कि कर क्या रहे हैं, हम लोग कितना गलत कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान नहीं है। लोग नाम रखते हैं, हमने आपको बताया होगा एक बार एक डॉक्टर है यहाँ पर ही दिल्ली में है, वो बता रहे थे उनके पास एक महिला आई, वो कहने लगी, वो भक्त है डॉक्टर, कि मैंने बड़ा अच्छा नाम रखा है अपनी बच्ची का, छोटी बच्ची मुझे छोटा नाम चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी बड़ा अच्छा, क्या नाम रखा है, श्वा। तो उन्होंने कहा श्वा का मतलब आप जानते हैं, शास्त्रों में श्वान मतलब कुत्ता होता है और श्वा मतलब मिसेस कुत्ता या जो भी। तो आप ऐसे बड़े प्रेम से उसको जीवन भर श्वा श्वा बुलाती रहेंगी, ना वो बेचारी उसका उद्धार होगा ना आपका उद्धार होगा, अंत में दोनों क्या बनेंगे तो आप ही जानते। तो लोगों को, लोग ये भूल गए हैं, जन्मदिन मनाते हैं, केक लाते, बहुत अच्छी बात है केक खिलाइए सब खिलाइए, लेकिन क्या करते हैं, कैंडल लगाते हैं बुझा देते हैं, ये अच्छा नहीं, ये हमारी सभ्यता नहीं। बच्चे को जन्म दिवस के दिन अगर आप करवाना ही चाहें उसको अच्छे से जन्मदिन मनाना, तो आप उसको मंदिर पहले लेकर जाइए, उसको ये आदत डालिए, छोटा बच्चा उसको बोले जन्मदिन है पहले मंदिर जाना है, ताकि उसको पता चले कि कोई भी कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए पहले मंदिर जाना होता है, उसको मंदिर लेकर जाइए, उससे कुछ भक्ति के कार्य कराइए, उसको यज्ञ में बिठाइए, कितना अच्छा है, कितना अच्छा संस्कार आप उसको दे रहे हैं। मैं उसमें सारे उनके मित्रों को, आपको जो उनको खिलाना है खिलाइए, अच्छा अच्छा बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और उसको खिलाइए, वो कोई तकलीफ नहीं है, बर्थडे मनाने में कोई तकलीफ नहीं है। रोहिणी माता ने मनाया बहुत अच्छी तरह, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनको फिर सब उपहार दिए, बहुत सुंदर भोज करवाया, ये परंपरा है जो कृष्ण से आ रही। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि ये जो हमने प्रथा बना ली है, ये आवाज बीच में सारी है कोई, ये जो हमने प्रथा बना ली है, बनाई क्या है, ये अंग्रेजों के हम या कहीं पाश्चात्य जगत से पालन कर रहे हैं, अंधे होकर इसको तोड़िए, बंद कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए कि आपके पड़ोसी ये करते हैं या वो करते हैं, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे किसकी सुनना, आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, आप गलत चीजों को रोक रहे हो। क्या आपका छोटा सा बच्चा है और आप उसको शराब पिलाओगे कि नहीं, अरे नहीं पिलाएंगे तो पास वाले जो व्यक्ति बड़े शराबी हैं वो क्या सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को शराब नहीं पिला रहे, नहीं नहीं बेटा पी, रोज पी, करोगे ऐसा, अगर आप करोगे तो फिर आप बड़े महान हो, आपसे क्या कहा जा सकता, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसी तरह कोई समाज में क्या कर रहा है, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, हमें उनको भी सिखाना है कितना गलत कर रहे हो, बच्चे का जन्मदिन ऐसे मत बनाए, बच्चे के जीवन को समाप्त मत करें। तो खैर उस दिन बलराम जी रुक गए थे क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम पूर्णिमा, तो फिर इसीलिए बलराम जी को पता नहीं क्या हुआ। तो अब सब शाम को वापस आए, थोड़ी सी देर हो गई इस सब में, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, अरे क्या हुआ, बच्चे नहीं आए अभी तक, गांव बछड़े नहीं आए। तो अब जब शाम को ये वापस पहुंचे तो बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उस ब्रज में पूरे जब कृष्ण रहते थे तो जितनी भी माताएं थी, गोपियां जो थी, जो माताओं के स्तर पर, वो अपने बच्चे से अधिक कृष्ण को प्रेम करती थी, ये नियम था, अपने बच्चे से तो प्रेम था लेकिन उससे अधिक कृष्ण से करती थी। जब सुबह कुछ बनाकर भी देती थी तो उसको कहती थी ये ले जा, लेकिन ये पहले कृष्ण को देना फिर खाना, इतना प्रेम था उनको कृष्ण से। लेकिन आज नहीं, आज उनको कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है, आज उनको अपने बच्चे से बहुत प्रेम। बड़े आश्चर्य की बात है, वो माताएं जो आज तक अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी, अब वो कृष्ण को नहीं कर रही है, वो अपने बच्चे को बड़ा प्रेम कर रही है, क्यों, वो भी कृष्ण ही है। जो गायें वो अपने बछड़ों से ज्यादा इंतजार करती थी कब कृष्ण आकर दूध पिए, हम कब कृष्ण को दूध पिला सके, आज नहीं, आज वो अपने बछड़े से ही इतना प्रेम कर रही है, उनको कृष्ण की चिंता नहीं है, क्यों, क्योंकि कृष्ण वही, उनका बछड़ा कृष्ण, तो सामने कृष्ण है उनके बच्चे के रूप में, बछड़े के रूप में, उनका तो प्रेम अगाढ़ हो गया। क्योंकि वैसे जब कृष्ण आते थे तो देख लेती थी, गोधूली के समय आए कृष्ण, फिर चले जाते थे कृष्ण, फिर यशोदा मैया ज्यादा तंग नहीं करने देती थी कृष्ण, बोलते नहीं 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 कल आना, जाओ अभी अभी जाओ, थक गया बेचारा सुबह से गया हुआ, अब नहीं उसको तंग कर, तो गोपियां चली जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो कृष्ण सतत उनके सामने है, तो गोपियों का प्रेम बढ़ गया, गायों का प्रेम बढ़ गया। और भगवान ने जब अपने आप को विस्तार किया था इस तरह से, तो ये इसलिए किया कि वो ब्रज की जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी गायें हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, उन सब की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, कि भगवान चाहते थे कि वो अपने प्रेम को पूर्णता से कृष्ण में लगा सके। तो ऐसे एक वर्ष तक कृष्ण रहे, रोज वही बालक घर जा रहे हैं, गाय चराने जा रहे हैं, सब हो रहा है, एक वर्ष तक किसी को पता ही नहीं, गाय बड़ा प्रेम करती है अपने बच्चों से, बच्चे बोले और सब चल रहा है बड़ा आनंद। वैसे इस एक वर्ष में ऐसे बताते हैं कि अधिकतर विवाह गोपियों के उस एक वर्ष में हुए। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने उन गोपियों से जो अन्यों की पत्नियां थी रासलीला की, तो ये सुन लेना चाहिए उनको कि इस वर्ष में गोपों के जितने भी गोप बाल थे उनके विवाह हुए, क्योंकि पहले बहुत जल्दी समय में हो जाते थे विवाह, तो विवाह हुए। और सारी गोपियों से किसने विवाह किया? कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ने ऐसे एक वर्ष तक लीला की। अब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता, वहां ब्रह्मा जी अब गए हैं और बछड़ों को रख के, बालकों को रख के आए जैसे ही, तो देखा तो आश्चर्य, फिर आए एग्जैक्टली पूरे एक साल हो गया था, वही समय था जब ब्रह्मा जी आए, वही दृश्य चल रहा था। ब्रह्मा जी को तो मानो मूवी चल रही हो, हैरान हो गए कि अरे मैं तो जैसे ऐसे जैसे होता है ना कि कोई पॉज करके चला जाए और फिर आगे पॉज छोड़े वहीं का वहीं है। आप लोग कभी कभी देखते हो मूवी, पहले देखा करते थे तो जब मूवी को होने तो पॉज कर दिया, पॉज हो गई फिर आप घूम घाम के आ जाओ, फिर पॉज छोड़ो मूवी वहीं की। ऐसा हो गया ब्रह्मा जी के लिए, जैसे मानो किसी ने पॉज कर दिया हो और अब ब्रह्मा जी वही चीज देख रहे हैं कि सारे बालक बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सबको ले गया था, ये क्या हुआ, सारे बालक बैठे हैं, बछड़े भी हैं, कोई चिंता नहीं, सब वैसे ही चल रहा है। तो कृष्ण ने ऐश्वर्य और मधुरता इन दोनों का संगम कैसे किया, वो अब यहां पर प्रकट होता है कि जब कृष्ण ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी आ गए हैं, तो अब ब्रह्मा जी को मैं दिखाता हूं। अब तक तो ब्रह्मा जी तो उनको समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, ये क्या हो रहा है, वो असली है कि ये असली है, मैं असली हूं कि मैं नकली हूं, उनको तो ये भी भ्रम हो गया कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है अब इनका भ्रम दूर करना चाहिए। तो उस समय ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी अंधकार में थे, अज्ञान में उस समय चले गए थे, तो भगवान ने अपनी शक्ति से उनको बाहर निकाला और फिर भगवान ने दिखलाई, वो सारे जो बालक थे जिनको ब्रह्मा जी देख रहे थे वो सब चतुर्भुज रूप धारण किए, श्रीवत्स का चिन्ह कौस्तुभ मणि धारण किए, वो सारे वहां पर प्रकट हो गए, सबके गले में तुलसी की माला थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, और तब उन्हें समझ में आई ऐश्वर्य को भगवान ने प्रकट किया। आपने कहां प्रकट कर रहे हैं, वृंदावन जो मधुरता का स्थान है, तो अभी अभी उन्हीं बालकों के साथ मधुरता का आनंद ले रहे थे और अचानक उस ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकट किया, ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो गए कि ये क्या हुआ, और उन्होंने तब जान लिया कि मैंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने न केवल उन बालकों को देखा अर्थात उन चतुर्भुज रूपों को देखा, उन्होंने वहां सब कुछ देखा, उन्होंने काल देखा, स्वभाव देखा, संस्कार देखे, बहुत सी सारी चीजें वर्णन किया गया, मतलब भगवान ने ऐसा दर्शन उनको कराया कि ब्रह्मा जी का जितना मोह था सब नष्ट हो गया कि वो कृष्ण है। तो फिर उस समय ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ये एक वर्ष के बाद हुआ और इस दिन भी बलराम जी नहीं आए थे। तो अच्छा, क्या बलराम जी को एक साल तक पता नहीं चला? यही वर्णन है, बलराम जी को एक साल तक नहीं पता था। 5 दिन पहले, केवल ये लीला समाप्त होने के 5 दिन पहले, अर्थात पूर्णिमा के दिन ये लीला हुई, बलराम पूर्णिमा के दिन, दशमी के दिन, बलराम जी ने देखा कि बड़ा आश्चर्य की बात है, ये माताओं को इतना प्रेम क्यों हो रहा है अपने बच्चों से। और फिर वो खड़े थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से, पर्वत के ऊपर से बछड़े वहां पर हैं और वो नीचे आ रहे हैं भाग कर। जो माएं हैं, जो गायें यहाँ पर, उनकी माएं जो हैं, वो ऐसे भाग रही हैं, ऐसे भाग रही हैं, और रंभा रही हैं, बुला रही हैं, पुकार रही हैं। बलराम जी बोले, तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतना प्रेम उनको हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि बालक आ रहे हैं भाग कर, तो उनके जो पिता हैं वो भाग कर गए हैं, गले लगा रहे हैं, हरेक बालक को बड़ा प्रेम दर्शा रहे हैं। बलराम जी ने ये सब देख कर बोला कि कहीं तो कुछ, हाँ कुछ हुआ है, ये स्वाभाविक प्राकृतिक नहीं दिख रहा, कुछ तो अलग चल रहा है यहाँ पर। तो बलराम जी ने कहा, लेकिन क्या कोई मुझे भ्रम में डाल सकता है? ऐसे कैसे मैं सोच रहा हूं कि कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे कौन भ्रम में डाल सकता है? फिर उनका मन प्रसन्न हो गया, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति मुझे भ्रम में डाल सकता है, और वो कृष्ण, और कोई मुझे भ्रम में नहीं डाल सकता। चाहे कोई शक्ति हो, कोई माया हो, कोई चीज हो, मुझे भ्रम में नहीं डाल सकती। हाँ, ये एक है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कर सकता है। तो फिर वो कृष्ण के पास गए, ये 5 दिन पहले की बात है। वो कृष्ण के पास गए और उन्होंने कृष्ण से पूछा, भाई क्या हो रहा है, स्पष्ट बताओ, ये सब मैं क्या देख रहा हूं, कहीं तो कुछ चल रहा है, तुमने क्या किया है? तब कृष्ण ने उनको सारी बात बताई कि क्या हुआ, कैसे ब्रह्मा जी ले गए थे और कैसे मैंने अपने आप को परिवर्तित किया। तो बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण की ये शक्ति का प्रदर्शन देखकर, सारे बालक कृष्ण हैं, सारे बछड़े कृष्ण हैं। तो बलराम जी को भी 5 दिन पहले ही पता चला ये खत्म होने के। तो जिस दिन ब्रह्मा जी पुनः आए, वो भी दिन बलराम पूर्णिमा का था, माता ने, रोहिणी माता ने फिर रोक लिया था, यज्ञ करना है, दान करना है, अध्ययन करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, तो फिर वो रुक गए थे। तो उस दिन अब ब्रह्मा जी ने जब देखा ये ऐश्वर्य भगवान का, तो ब्रह्मा जी तो बड़े चकित रह गए भगवान को देखकर, और समझ गए कि बालक नहीं, परम सत्य हैं, भगवान हैं। और ये जानकर वो अपने हंस से नीचे उतरे, कृष्ण के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बारंबार किया प्रणाम, और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की श्री कृष्ण के प्रति। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थनाएं भागवत के 14वें अध्याय में आती हैं, 10वें स्कंद के, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, ज्ञान से भरी हुई है, मतलब ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि इन प्रार्थनाओं पर, एक एक प्रार्थना पर कई कई दिन चर्चा हो सकती है, इतना ब्रह्मा जी ने उन प्रार्थनाओं में ज्ञान को दिया है, भक्ति को दिया है। ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थनाओं में ये समझाया कि कौन भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के गुणगान को, और कौन नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार की निंदा की, ब्रह्मा जी ने भगवान के अचिंत्य शक्तियों का वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने भक्ति का वर्णन किया, अन्य मार्ग के ऊपर ज्ञान इत्यादि, उनके ऊपर भगवान क्या, उनके ऊपर भक्ति का क्या महत्व है, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। और फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की भगवान की कृपा याचना के लिए। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के विभाग हैं, ब्रह्मा जी किस किस तरह की प्रार्थना करते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण, इतना ज्ञान से परिपूर्ण ये प्रार्थनाएं हैं। इसके लिए पूरा कोई सप्ताह होना चाहिए, बोलते जाए इन प्रार्थनाओं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने पहले श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया, भगवान प्रणाम करके कि किस तरह हैं, क्या रंग है, कैसे खड़े हैं, कौन सी माला पहनी हुई है उन्होंने, और किस प्रकार के फूल उनकी माला में लगे हुए हैं, उनके हाथ में गायों को चराने वाली वो लकड़ी है, और एक हाथ में दही और चावल लिए खड़े हुए। ब्रह्मा जी उस दृश्य को देखकर उसको, क्या क्या सुंदरता है भगवान की। भगवान की सुंदरता के लिए शास्त्रों में कई श्लोक हैं, भागवत में भी, लेकिन कुछ श्लोकों को बड़ा महत्व दिया गया है। तो उनमें से ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की सुंदरता का वर्णन, ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भगवान की सुंदरता का वर्णन और गोपियों के द्वारा भगवान की सुंदरता का वर्णन, इसको, इन तीन को बड़ा महत्व दिया गया। तो ब्रह्मा जी सुंदरता का कर रहे हैं, जैसे गोपियों ने भी किया है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रम वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, तो गोपियों के द्वारा गुणगान। तो ब्रह्मा जी भी ऐसा ही गुणगान श्री कृष्ण का करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा गए, उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो बड़ी निंदा करेंगे, कि कृष्ण कहेंगे हाँ तुम तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, ब्रह्मा हो, मैं तो साधारण ग्वाल बाल हूँ, मुझे क्या ज्ञान है, वो भी भ्रमित हूँ इस समय ढूंढ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने जब वो चतुर्भुज रूप सारे देखे, उसके बाद भगवान ने वो सारे चतुर्भुज रूप गायब कर दिए, और फिर क्या देखा ब्रह्मा जी ने, वही बालक, वो हाथ में दही चावल लेकर ढूंढ रहे गायों को। तब ब्रह्मा जी ने कहे प्रभु आपकी महिमा। तो ब्रह्मा जी वे सोचने लगे कि अब तो भगवान जान मुझके मुझे कहेंगे अच्छा तुम तो बहुत बड़े हो, ब्रह्मा हो, मैं क्या, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ना ही मैं ना ही कोई और व्यक्ति आपकी शक्ति का अनुमान लगा सकता है, हालांकि हमारा जो मन है बहुत नियंत्रण में रहता है, फिर भी आपकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। तो फिर साधारण लोगों का कहना ही क्या, हम देवता जिन लोग अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं वो नहीं कर सकते, फिर साधारण लोगों का क्या कहना, तो फिर क्या कोई नहीं प्राप्त कर सकता, कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ कुछ लोग समझ सकते हैं, कौन, ज्ञानी प्रयास मुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवाक मनोभीर ये प्रायशो जितो जितो व्यसित स्त्रलोक्यम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण आप तो बहुत महान है, लेकिन आपको भी जीता जा सकता है, कैसे, ज्ञानी प्रयास समुदपस्य नमंत एव, तो कैसे जीता जा सकता है कि आपको ज्ञान और प्रयास के मार्ग को छोड़कर आपको जो शरण जाता है, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, जो आपकी कथा सुनने के लिए जीवित रहता है, जीवन भर आपकी कथा को श्रवण करता है, स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवाक मनोभी, जहां है वहां रहकर अपने तन से अपनी वाचा से अपनी अपनी इंद्रियों से मन से ये केवल आपकी सेवा करता है, स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवाक मनोभी ये प्रायशो जीत, वो जीत सकता है आपको। तो हमें जानना चाहिए कि इस जगत में वैसे तो हम नहीं चाहते कि हम भक्त को इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे कुछ जीतना है, हम तो जैसे हैं भगवान जैसे रखें, लेकिन फिर भी भक्त जीतना चाहता है। किसको जीतना चाहता है भक्त? सबसे पहले अपनी इंद्रियों को जीतना चाहता है, कि मैं अपनी इंद्रियों पर विजय पाना चाहता हूँ। अहम दर्श्यामि दुरंत पारम, वो इन इंद्रियों को जीतना चाहता है। दूसरा अपनी अपराध करने की मानसिकता को जीतना चाहता है, हम सब इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक भक्त को करना चाहिए, हमें इस जगत की विजय पराजय से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर विजय करनी आवश्यक है, हमें उस मानसिकता पर विजय करना आवश्यक है जो हमें अपराध करने के लिए प्रेरणा करती है, क्योंकि बहुत बड़ी बाधा है। हमें उन सारे दर्शनों पर, सिद्धांतों पर, वादों पर विजय प्राप्त करनी है जो भक्ति के विरुद्ध है, फिर वो चाहे मायावाद हो, फिर वो चाहे देव भक्तिवाद हो, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना सिद्धांत क्यों ना, अगर भगवान की भक्ति के विरुद्ध है हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है, ताकि वो हमें पराजित ना कर दे। विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है, हम ये नहीं चाहते कि वो हमें पराजित कर दे, हमारी इंद्रियां हमें पराजित ना कर दें, हमारी हमारी पाप करने की, हमारी अपराध करने की प्रवृत्ति हमें पराजित ना कर दे। ये सारे गलत दर्शन, ये सिद्धांत जो लोगों ने प्रस्तुत करके भ्रमित किया हुआ है समाज को, वो हमें परास्त ना कर दे। और अंततः हम जीतना चाहते हैं भगवान को। हाँ, हम जीतना चाहते हैं भगवान को, लेकिन कैसे? उनसे पराजित होकर। ये एक ही ऐसा युद्ध है जो पराजित होकर जीता जाता है। साधारणतः जब कोई व्यक्ति पराजित हो जाता है तो जिससे पराजित होता है उसके विजय नहीं होता, लेकिन भक्ति ऐसी है, अगर हम भगवान से पराजित हो जाएं, उनके चरण कमलों की शरण ले लें, जीतो जीतो प्यस्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप अजीत को जीत सकते हैं। जो अजीत है, जीता नहीं जा सकता, उनको भी जीत लेते। तो इसीलिए हमें पराजित करना है अन्य, हमें पराजित करना है इंद्रियों को, हमें पराजित करना है मानसिकता को अपराध की, हमें पराजित करना है अन्य वाद और दर्शनों को, और हमें जीतना है कृष्ण को, कृष्ण से पराजित होकर। ये भक्ति है। ब्रह्मा जी कहते ज्ञाने प्रयास समुद्रपस्य नमन्ति। तो कहते हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं करता तो जो भी प्रयास कर रहा है वो क्या है। जैसे वो कहते हैं कि जब गेहूं उगाई जाती है तो जो गेहूं के दाने होते हैं वो जिस फसल में होते हैं, तो जब दाने निकाल लिए जाते हैं तो खाली भूसा रह जाता है। अब कोई व्यक्ति उसको पीट रहा है, उसमें से दाने निकालने के लिए कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि दाने तो पहले ही चले गए, खाली भूसा है, उसमें से क्या निकलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ये इसी तरह है, अगर कोई भक्ति नहीं करता और प्रयास कर रहा है जीवन में सफल होने का, सुखी होने का, वो केवल पीट रहा है, कुछ नहीं आने वाला। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो वर्णन करते हैं कि हमें ये प्रयास करना चाहिए। और वो बताते हैं कि आधार है श्रवण और कीर्तन। पूर्व काल में भी कई योगियों ने केवल श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपने जीवन को सफल किया है। वो कहते जो भक्ति नहीं करते अधिकतर ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो तो कृष्ण को जीत लेते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इस जगत में हमारे पास हर व्यक्ति के पास, एक स्थान पर कहा गया कि हर व्यक्ति के पास तीन पत्नियां हैं, तीनों साध्वी हैं। साध्वी मतलब छोड़ती नहीं है। तो पहली पत्नी है भूख, दूसरी पत्नी है प्यास, और तीसरी पत्नी है आशा। ये मनुष्य की तीन पत्नियां हैं, और उसमें भी आशा को महासाध्वी कहा गया। बाकी सब तो साध्वी हैं, जो आशा ये महासाध्वी है। क्यों? वो कभी नहीं छोड़ती हमको, कभी नहीं छोड़ती हमें। इस जगत में सुखी रहने की आशा बनी रहती है, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसीलिए आशा को तो महासाध्वी कहा गया। मरते मरते भी व्यक्ति की आशा, प्रभुपद बताते उनके एक मित्र इलाहाबाद में मर रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे 2 साल दे दो मुझे बस, और मतलब आशा ने तब भी नहीं छोड़ा है। ये पिंड है आशा पिंड, वो कभी नहीं छूटता, बुढ़ापे में मरते दम तक नहीं छूटता। तो ये व्यक्ति की तीन पत्नियां हैं। इसीलिए जो अभक्त होते, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो प्यास को छोड़ सकते हैं, भूख को छोड़ सकते हैं, लेकिन आशाओं को नहीं छोड़ते, और जिसके कारण वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक हमारी आशाएं बनी हैं इस जगत में, हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, सुखी होंगे, एक दिन हम ये प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण प्राप्त नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा जी फिर आगे गुणगान करते हैं कि आपके तो गुणों का अगर वर्णन किया जाए तो आपके तो असीमित गुण हैं। वो कहते हैं कि कभी अभी ऐसा हो सकता है कि जो ये प्रकाश आ रहा है सूर्य का, इसमें कितने कण हैं कोई ये गिन सकता है, या पृथ्वी पर ये जो छोटे छोटे अणु, कितने अणु हैं कोई गिन सकता है, लेकिन आपके गुणों को गिनना असंभव, वो कोई नहीं गिन सकता। और फिर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा दे। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्दधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा। तो कहते हैं भक्ति क्या है, तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो, आपकी कृपा को समझना ये भक्ति है। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्दधन् नमस्ते, और आपकी कृपा को समझकर जो हर अवस्था में आपको केवल धन्यवाद देता है, विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भा। मुक्ति तो उसके लिए अधिकार हो जाती है, अर्थात वो कहते हैं कि जो भक्ति करता है ऐसे भक्त को मुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति उसका अधिकार हो जाता है अगर वो केवल भक्ति करता। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने बहुत सी और बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं की, बहुत सारी उनकी प्रार्थनाएं हैं, अभी तो केवल एक दो प्रार्थनाओं को हमने कहा है, लेकिन समय भी काफी हो रहा है और आगे इसके कहना लग रहा है कि संभव नहीं होगा। तो हमें कहा भी गया था कि 7 बजे तक का समय है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। तो सार के रूप में इस अभी तक जो कहा उसको सार के रूप में अगर प्रस्तुत करें तो ब्रह्म विमोहन लीला ये वो लीला है जहां भगवान ने अपने ऐश्वर्य और मधुरता के संगम को प्रस्तुत किया। भगवान ने ये दिखलाया कि वो परम है। भगवान ने अपने भक्तों से प्रेम के आदान प्रदान के लिए इस लीला को किया, उन सारी माताओं को, उन सारी गायों को आनंद दिया वर्ष भर जो कृष्ण को प्रेम करती रही। क्या क्या उनके आनंद होगा, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो इससे बहुत सारे निर्देश हमें जीवन में मिलते हैं। पहला निर्देश हमें मिलता है कि जो लोग कृष्ण की शरण ले लेते हैं वे देवताओं के अधिकार से परे हो जाते हैं, देवता उनको कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हमें बड़ी रुचि है देवताओं की भक्ति में तो हमें ये लीला से सुनना चाहिए और फिर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं जो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो और कभी जब अवसर होगा तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को आगे कहेंगे, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं। वो भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना भी करते हैं और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो लात मारता है माँ को पता चलता है, तो क्या माँ अपराध सोचती है, अरे बच्चा अपराध कर रहा है मुझे लात मार रहा है? नहीं, माँ को बड़ा आनंद आता है, तो मैं भी आपका बच्चा हूँ, ये ब्रह्मांड गर्भ है, मैं आपके गर्भ में हूँ, आपको अगर मैंने थोड़ा सा अपराध कर दिया तो थोड़ा क्षमा कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर ब्रह्मा जी क्षमा याचना करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं को कभी और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा